नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की कार्ययोजना के अंतर्गत 8 क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। न्यू मेक्सिको की अदालत ने मेटा को अपने प्लेटफॉर्मों द्वारा युवाओं को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए 56.70 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीता। और अश्मिता चालिहा ने कोरियाई मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा के अंतर्गत 8 क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
बैठक की सह अध्यक्षता भारत के पूर्व विदेशों के प्रभारी सचिव रुदेन्द्र टंडन और सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव ल्यूक गोह ने की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया। व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। इस रोडमैप में आर्थिक सहयोग, कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, संपर्क व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की योजना शामिल है। विश्व दर्पण के लिए सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आवर्जन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। ये कार्यकारी आदेश जून में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के कुछ सप्ताह बाद आए हैं जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से मौजूद माता पिता से जन्मे बच्चे 14वें संशोधन के नागरिकता खंड के तहत स्वतः अमेरिकी नागरिकता के हकदार हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया है कि ईरान से जुड़ा संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा। श्री ट्रंप का कहना है कि ईरान अब और अधिक समय तक टिक नहीं सकता। राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में ईरान में किए गए अपने इस महत्वपूर्ण अभियान का बचाव किया और तर्क दिया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अमेरिका ईरान समझौते की संभावना पर श्री ट्रंप ने कहा कि बातचीत जारी है और प्रगति हो रही है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। न्यू मेक्सिको की एक अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा को उनके प्लेटफॉर्म से युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 56.70 करोड़ अमरीकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
ये मार्च में कंपनी द्वारा हारे गए एक ऐतिहासिक मुकदमे का दूसरा चरण है। न्यायाधीश ब्रायन बिटशाइड ने फैसला सुनाया था कि कुल धनराशि में से 42 करोड़ अमेरिकी डॉलर युवाओं के उपचार सेवाओं के लिए उपयोग किए जाएंगे, जबकि शेष राशि अगले 5 वर्षों में जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रमों, स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य संबंधित खर्चों के लिए उपयोग की जाएगी। अभियोजकों ने न्यायाधीश से मेटा में मूलभूत बदलाव लागू करने का अनुरोध किया था, जिनका उद्देश्य व्यस्तकारी सुविधाओं पर लगाम लगाना, आयु सत्यापन में सुधार करना और कड़ी निगरानी के माध्यम से बाल यौन शोषण को रोकना था। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
चीन में जातीय एकता कानून लागू किए जाने के विरोध में तिब्बती युवा कांग्रेस द्वारा धर्मशाला में शुरू की गई भूख हड़ताल आज 20वें दिन में प्रवेश कर गई। ये विरोध चीन के जातीय एकता कानून के खिलाफ है, जो प्रदर्शनकारियों के अनुसार तिब्बतियों सहित अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान और अधिकारों के लिए खतरा है। निर्वासित तिब्बती संसद के 3 सदस्यों ने भी आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए धर्मशाला में भूख हड़ताल में भाग लिया। 19 जुलाई से तिब्बती युवा कांग्रेस तिब्बतियों की आवाज को बुलंद करने और तिब्बत के बारे में सच्चाई को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने के लिए एक वैश्विक विरोध अभियान चला रही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला मामलों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इबोला के कुल मामलों की संख्या 4,053 तक पहुंच गई है, जिसमें 1,850 मौतें भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि कांगो में इबोला के प्रकोप से 330 बच्चों की मौत हो गई है। ब्राजील की फेडरल पुलिस ने 2024 में हुई विमान दुर्घटना के मामले में वोपास के 16 मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए हैं। इस हादसे में विमान में सवार सभी 62 लोगों की मौत हो गई थी। जांचकर्ताओं ने एयरलाइन पर गड़बड़ी, लापरवाही और जरूरी काम न करने का आरोप लगाया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने अंतिम दौर से पहले वाले दौर में उज़्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदोरोव के साथ ड्रॉ खेलकर चैंपियनशिप अपने नाम की। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। प्रज्ञानंदा ने 5 दिवसीय प्रतियोगिता में शुरू से अंत तक बढ़त बनाए रखी। अश्मिता चालीहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जापान की हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से जारी है। पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी कार्ययोजना के अंतर्गत 8 क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। न्यू मेक्सिको की अदालत ने मेटा को अपने प्लेटफॉर्मों द्वारा युवाओं को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए 56.70 करोड़ अमरीकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीता और अश्मिता चालीहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।